खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से इफिसियों 2 बाप उसकी 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ेंगे और आज हम इसमें से सीखेंगे। और खुदावंद का बंदा पालूस रसूल यहाँ पर कहता है, पस याद करो तुम जो जिस्म के रोह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। और फिर 12वीं आयत, अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की संतलत से खारिज और वादा के उहदों से ना वाकिफ और ना अमीर और दुनिया में खुदा से जुदा थे। पाकलाम के पढ़े और खुदा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। जैसा कि हमने कल सीखा कि खुदा का बंदा पालूस रसूल जब इफिसस की कलीसिया को, इफिसस उस शहर का नाम था और उस शहर के रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, इफिसियों। तो इफिसियों की कलीसिया को जब वो ये खत लिखता है जो मसला इफिसस के रहने वाले मसीही ईमानदारों को था कि यहूदी उनको क्या कहते थे कि तुम खुदा के वादों से नावाकिफ हो, तुम उन तमाम उम्मीदों से जो उम्मीदें खुदावन ने इसराइलियों को बख्शी हैं उनसे तुम्हारा कोई तल्लक नहीं, और तुम खुदा से इस दुनिया में जुदा और अलहदा हो। सो पालूस रसूल उनको लिखते हुए बयान करता है कि तुम जो जिस्म के रौह से एक वक्त में गैर कौम थे, जैसा कि हम सब, कोई मसीही पैदा नहीं हुआ, हमारे बाप दादा ने कहीं ना कहीं से दूसरी पुश्तें लगा लें, तीसरी पुश्तें लगा लें, चार पुश्त से लगा लें या इससे ज्यादा पुश्तें, कहीं ना कहीं से इससे पहले के पाकिस्तान वजूद में आता, जब हम सब, हमारे बाप दादा, हमारे परदादा, जो हमारी पिछली पिछली नस्लें जो इंडिया में रहती थी, जो पंजाब के हैं, कुछ गुजरात के हैं, कुछ हैदराबाद से हैं, बहुत से मुख्तलिफ इलाकों से हैं, तो उस दौर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वसीला से हमने यसू, हमारे बाप दादा ने, यानी कि बाप दादा ने यसू मसीह की खुशखबरी सुनी तो उन्होंने यकीन किया, और वो जब गैर कौम थे तो मसीह की कौम बन गए। तो पालूस रसूल इफिसस के रहने वाले लोगों को जो क्या थे, बुत प्रस्त थे, देवी देवताओं की हाथ के बनाए हुए बुतों की और उनके दरमियान बहुत से मंदिर थे, बहुत सी मंदिरों में देवी देवताओं की क्या कहते थे, सूरतें थी जिनके आगे वो झुककर दुआ करते थे, जिनको वो अपने खुदा और देवी और देवता मानते थे। तो पालूस रसूल उनको याद दिलाता है कि तुम एक वक्त में गैर कौम थे, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने, यानी के यहूदी लोग, यहूदियों के लिए ये खुदा की तरफ से वादा था, इब्राहिम से खुदा ने वादा किया था, मूसा को खुदा ने हुक्म दिया था कि जब भी इसराइली कबीले में, खानदान में कोई बेटा पैदा हो तो उसका खतना करना, जैसे बहुत दफा हमारे खानदानों में और हमारे शहर में और मसीहियों में बहुत दफा लोग बच्चे का खतना करते हैं, जिसे दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि 8वें दिन यहूदी रिवाज के मुताबिक खतना था, वैसे ही बहुत दफा हमारे रिवाज में भी बहुत से माँ बाप ऐसा करते हैं, जिसे कहते हैं कि हमारे आज घर खुशी का खाना है जी, हमने ये देना है क्योंकि हमारे बच्चे की सुनते हैं। यहूदी लोग गैर कौम वालों को क्या करते थे, ठट्ठों में अड़ाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे और उनको इस बुनियाद पर कहते थे कि तुम नामख्तून हो। नामख्तून ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था कि तुम वो लोग हो जिनको खुदा की तरफ से ये वादा नहीं मिला, ये तुम्हें जिस्मानी निशान नहीं मिला। तो ये बातों का सामना था एफेसस की कलीसिया को, और इस बुनियाद पर यहूदी उनको कहते थे कि अगले जमाना में मसीह से जुदा। आप जब गौर से देखते हैं लफ्ज जुदा और खुदा को, तो सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, पालूस कहता है कि वो लोग तुमको कहते कि अगले जमाना में यानी कि गुजरे जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के ओहदों से ना वाकिफ। तो कल हमने सीखा था कि अगले जमाना में यानी कि गुजरे हुए जमाने में वो मसीह से जुदा थे। जुदा का मतलब अलहदा किया हुआ, जुदा का मतलब तकसीम कर देना, किसी को दो हिस्सों में बांट देना। आपको याद होगा मुसरब बेटे की कहानी कि जब उसने अपने बाप से ये दावा किया कि जो कुछ मेरा बनता है वो मुझे दे दे और वो अपने रास्ते हो लिया। सो यहूदी रिवाज में जब यहाँ पर जो लफ्ज जुदा है इसके पीछे बहुत कुछ सीखने के लिए है। जैसे यहूदी रिवाज था कि जब कोई रिश्तेदार किसी से अपना नाता या रिश्ता तोड़कर उससे अलहदा हो जाता तो वो क्या करते थे कि वो घड़ा लेते थे और उस घड़े को वो शहर के चौक में तोड़ते थे और जब ही घड़ा टूटता था तो वो कहते थे कि आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म, तुम और हम जुदा हो गए, हम में जुदाई पड़ गई है, हम अलहदा हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज पालूस उसूल इस्तेमाल करता है उसका मतलब है खुदा से जुदा, खुदा के बगैर थे और इसराइल की संतलत से खारिज थे। खारिज का मतलब जब आपको पुराने अहदनामा में कहानी अभी तक हमने नहीं देखी है वो कहानी, लेकिन जल्द देखेंगे सीखेंगे। पुराने अहदनामा में जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो रिवाज को बयान करते हुए रिवाज कहता है कि यहूदियों में जब किसी को कोढ़ पड़ जाता था तो उसे ये हुक्म होता था यहूदी रहनुमाओं की तरफ से, यहूदी आबादी की तरफ से कि ये नापाक है, इसलिए इसे हमारे दरमियान से खारिज किया जाए, अलहदा कर दिया जाए, इसे दूसरी जगह भेज दिया जाए। तो पालूस रसूल यहाँ पर जब कहता है कि वो तुमको कहते थे कि इसराइल की संतलत से यानी कि इसराइल के शहर से, आबादी खानों से, उन खानदानों से, उन तमाम रीति रिवाज से, उन तमाम वादों से क्या थे तुम खारिज। तो कोढ़ियों को उस वक्त में क्या हुक्म होता था कि वो शहर के बाहर फाटक पर, जैसे हमारे शहर कलोनी के बाहर फाटक है ना, वैसे उस वक्त जो फाटक का लफ्ज, जैसे फाटक के दो गेट हैं तो दो रास्तों को वो अलहदा कर देता है कि ये भट्टे की बस्ती है और ये अपना भट्टा नंबर दो है और दूसरा भट्टा नंबर या दूसरी बस्ती को जाहिर करता है। तो उस वक्त लोग फाटक का लफ्ज इस्तेमाल करते थे क्योंकि उनके शहर के दरमियान गिर्द क्या होती थी, दीवारें होती थी। जैसे आपके साथ जो गुलशन वहाब कॉलोनी है, ये नई नई कॉलोनी बन रही है, उसकी सारी हद के गिर्द क्या है, दीवार है और उसका एक फाटक है कि दो फाटक है जिससे लोग आते और जाते हैं। तो यहूदी रिवाज में जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो उसे हुक्म होता था कि वो शहर से अलहदा हो जाए, खारिज हो जाए क्योंकि वो नापाक है। और उसके लिए ये खास हदायत थी कि जब वो शहर में आए तो उसके हाथ में घंटी होती थी और वो घंटी खड़खड़ा खड़काता था और आवाज़ पैदा करता था और दूर से ही चलाना शुरू कर देता था, नापाक, मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ। तो इससे लोगों को पता चल जाता था ये कोढ़ी है, तो लोग उससे दूर हो जाते थे ताकि किसी को कोढ़ ना लग जाए। कोई कोढ़ी किसी को जब छू लेता था तो वो नापाक हो जाता था। इसलिए पालूस रसूल यहाँ पर उन ईमानदारों को कहता है कि तुम जब खुदा से जुदा थे, इसराइल की संतलत से खारिज और वादों के ओहदों से ना वाकफ थे। और ये बात यहूदी उन पर क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना किसी को मीना देने के लिए, बहुत दफा जैसे हम बहुत दफा बहन भाई करते हैं, बहुत दफा मसीही लोग करते हैं कि किसी बहन ने किसी के घर से खाने के लिए सब्जी ले ली या एक दो वक्त का क्या कहते हैं कि आटा ले लिया, तो बहुत दफा जब लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि फलां वक्त मैंने तुझे सालन दिया था, फलां वक्त मैंने तुझे आटा दिया था जब तू ये मजबूरी में थी। तो ऐसा ही यहूदी उस वक्त के लोगों से करते थे जो यहूदी नहीं थे, जिसमें कौन थे? यूनानी लोग, जिसमें और बहुत से कबीलों के लोग थे, जिन तक पालूस रसूल, यूहन्ना और फिर दूसरे तमाम रसूल पहुंचे। और खासकर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पालूस रसूल ने उनको मसीह की खुशखबरी सुनाई, तो उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। और जो पहले से मसीह यहूदी थे वो कहने लगे कि ये हरगिज नहीं हो सकता कि ये खुदा के वादों से और उन तमाम बरकतों से क्या हो, बरकत पाए। जैसे बहुत दफा हमारे रिवाज में जब कोई मसीह को कबूल कर लेता है तो हम मसीही जो होते हैं बहुत दफा क्या करते हैं, उन लोगों से जो मसीही हुए होते हैं उन पर सबसे पहले शक करते हैं, शक करते हैं कि ये किस मकसद के लिए मसीही हुआ। दूसरी बात, हम उनको कबूल नहीं करते। तीसरी बात, बहुत दफा कोई मसीही खानदान अगर वो नौजवान है तो उनसे अपनी बेटी की शादी ब्याह नहीं करता, क्योंकि वो मसीह को कबूल करके दूसरे मजहब से मसीही मजहब में आया है, और बहुत दफा उसे मसीही आबादियों में कबूल नहीं किया जाता। ऐसा ही होता ना जी, आज बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही होता है, और ये खासकर हमारे ही इस मुल्क में होता है और कहीं नहीं। दूसरे ममालक में जब कोई मसीह को कबूल करता है तो उसे दिल से कबूल किया जाता है, उसे अपने घरों में जगह दी जाती है। मुझे याद है, मैं जब जाता हूँ मुख्तलिफ गिरजा घरों में यहाँ पर, तो लोग मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ कबूल करते हैं, क्योंकि बेशक मैं सफ़ेद नहीं हूँ, लेकिन वो इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि इसने यीशु मसीह को कबूल किया है और ये यीशु मसीह में हमारा भाई है। लेकिन बहुत दफ़ा आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत दफ़ा गिरजा घरों में पादरी साहब बहुत बड़े बड़े पैगाम देते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन जब किसी को मसीही को, जो नया मसीही हुआ है, उसे जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसे बुलाना पसंद नहीं करते। अगर कोई आज इस दौर में मसीही होता है तो सबसे अनोखी ये बात है कि वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस है। और मसीहत में क्या है, हम किसी को ना तो अच्छी नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि हमें खुद नौकरी हासिल करने के लिए रिश्वत देने की ज़रूरत है, ना हम किसी को नौकरी दे सकते हैं, ना ही हमारे पास कोई जायदाद है कि किसी को जायदाद का हिस्सा दे दें, तो फिर हम किस बात के लिए हिचकिचाहते हैं? इसी बात के लिए कि ओ, इसने मसीह को कबूल किया। और बहुत दफ़ा हम अल्ज़ाम या ऐब या गलत निगाह से उस बेटी बेटे को देखते हैं, क्योंकि हम यहूदियों जैसा रवैया इख्तियार करते हैं, ना कि यीशु मसीह जैसा। आपको याद होगा जब यीशु मसीह शराबियों, गुनाहगारों और ठुकराए हुए और उन लोगों से जो उस वक्त के उस दौर में अलहदा किए हुए लोग थे, जब जाकर यीशु मसीह उनके साथ बातचीत करता था। मेरे साथ एक हवाला निकालें, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील और उसका 15वां बाप उसकी पहली चंद आयात पढ़ेंगे, पहली आयत से पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे उस वक्त के लोगों का रवैया और बहुत दफ़ा आज के दौर के मसीहियों का रवैया। इसलिए हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें कैसे एक दूसरे से पेश आने की ज़रूरत है। लूका की इंजील उसका 15वां बाप उसकी पहली आयत, सब मसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे, किसके पास? खुदावंद यीशु मसीह के, ताकि उसकी बातें सुने, या के ताकि उसका कलाम सुने। और फरीसी और फकीया बुड़बुड़ा कर कहने लगे, ये उस वक्त के लोग थे जो कलाम को लिखने वाले और हैकल में कलाम को पेश करते थे, यानी कि मूसा की शरीयत के बारे में बताते थे कि शरीयत ये कहती है, ये कहती है, ये करो, ये हुक्म है, ये करना है, ये नहीं करना। तो फरीसी और फकीया बुड़बुड़ा कर कहने लगे, ये आदमी कौन? खुदावंद यीशु मसीह। ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। बहुत दफा हमारे मौजूदा माहौल में, हमारी बस्ती में बहुत दफा क्या होता है, ओ जी ये फलां चर्च से तल्लक रखता है इसलिए इससे बात करना भी पसंद नहीं, ओ ये फलां जगह पर दुआ करने के लिए जाता है इसलिए इससे बोलना मुनासिब नहीं। हैरानगी की बात और अफसोस की बात है, क्योंकि हम वही बात दोहरा रहे हैं जो एक दौर में यहूदी उन यूनानियों से और उन तमाम लोगों से करते थे, जो एक वक्त में पत्रस ने जब पैगाम दिया तो 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया और वहाँ पर कम से कम 10 से 12 मुख्तलिफ कबीलों का जिक्र है कि उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और वो कलीसिया में आ मिले। हमें आज उस कलीसिया की तरह बनने की जरूरत है जो दुआ करने में, रोटी खाने में और कलाम पढ़ने में मशगूल थे। हमें ऐसी कलीसिया बनने की जरूरत है, ना कि यहूदियों जैसा रवैया, जैसे पालूस यहाँ पर कहता है कि अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की संतलत से खारिज और वादा के ओहदों से ना वाकिफ थे। ये बात एफसस की कलीसिया को सामना थी। उनके दिल को तोड़ने के लिए यहूदी करते थे, उनको हैकल में इबादत नहीं करने देते थे, उनको उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, उनको क्या कहते थे, गैर कौम, गिरजाघर गुनाहगारों के लिए खुदा की ऐसी जगह है जहां पर वो खुदा से बात करने के लिए आते हैं। लेकिन आज गिरजाघर सियासत का अड्डा है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आज गिरजाघरों में बजाय के रहम और मोहब्बत और तर्स और माफी की बजाय क्या होता है, पार्टी बाजी। वही बात जो हैकल में उस वक्त फकी और फरीसी करते थे, आज गिरजाघरों में उन्हीं के साथ गुफ्तगू की जाती है जो हदिया देते हैं ज्यादा। अगर कोई कम हदिया देता है तो उसे बुलाना भी गवारा नहीं करते, उसके घर में जाना भी गवारा नहीं करते, उसके घर से चाय पीना भी क्या समझते हैं, जहर समझते हैं लोग। इसलिए हमें वैसी कलीसिया नहीं बनना। उस दौर में पालूस उनको ये सबक देता है कि तुम खारिज थे। ये अल्फाज जो हमने देखे, जुदा थे यानी कि रिश्ता मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ, खारिज थे वादों से यानी कि जब कोई कोड़ी होता था तो उसे शहर से दूर कर दिया जाता था। लेकिन पालूस रसूल हमें आगे चलकर बयान करता है, मगर तुम जो पहले दूर थे, हम जो पहले दूर थे पालूस रसूल, उस वक्त के और आज के दौर में हमसे खुदा का कलाम जो जिंदा है यही बात करता है, हम जो पहले दूर थे अब मसीह यसु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हैं। तमाम बहन भाइयों को जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, हमें प्यार, उन पर तर्स, उनके लिए दुआ, उनसे मोहब्बत करने की ज़रूरत है, ऐसे जैसे हम अपने बदन से करते हैं। हमें ऐसे मसीही बनने की ज़रूरत है जो मसीह की इबादत करते हैं, ना के लोगों की। हमें ऐसे मसीही बनने की ज़रूरत है कि हम मसीह की ताबेदारी करें, ना के लोगों की। हमें मसीह के असूलों और हुक्मों पर चलने की और रवाजों पर चलने की ज़रूरत है, ना के इंसान के बनाए हुए रवाजों पर। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन वक्त कम है, इसलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, हर रोज़ खुदा के कलाम को सुनकर उससे मांगने की जरूरत है कि मुझे अमल करने की कुव्वत और ताकत दे। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आए हुए तमाम बहनों भाइयों को, बुजुर्गों को, माओं को, बच्चों को, नौजवानों को बड़ी बरकत दे कि हम जैसे यहूदी रवैया था, गैर कौमों के साथ हम दूसरों के साथ ना करने वाले बने, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं।